ओम शांति। जिनकी तन मन तप से पावन हो, जिनकी तन मन तप से पावन, जो सतयुग का करता है सृजन, जो सतयुग का करते हैं सृजन, इन राजयुग में कुसुम देवी को हम करते हैं सत सत वंदन। राजयुग में कुसुम देवी को हम सत सत करते हैं वंदन। एक बार हम करतल ध्वनि से आदरणीय कुसुम देवी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र से पधारे कुसुम देवी जी, चंद्रपुर से। बाबा जैसे कहते हैं 108 माला की दाना, दीदी तो दाना भी है, साथ साथ उन्होंने 108 गीता पाठशालाएं भी खोली है और बहुत ही सरलता, बहुत ही उमंग उत्साह जीवन में है। अनेकों की उमंग उत्साह सदा बढ़ाते रहते। कहीं भी सेवा हो तो दीदी जी वहां पहुंच जाते, देश विदेश क्या हर जगह। और पुरुषार्थ भी दीदी जी का बहुत तीव्रता की है। 40 साल से दीदी जी आप समर्पित हो और विशेष कुछ चंद्रपुर में रहकर उसके आसपास के एरिया की आप सेवा करते हैं, साथ साथ चक्रवर्ती बनकर पूरे विश्व में चक्र लगाते रहते हैं। दीदी जी के द्वारा हम अनुभव की बोल सुनेंगे। ओम शांति।
प्यारे बाबा ने हम सभी को एक गुलदस्ते में बांधा है। कौन कहां से, कौन कहां से, किस धर्म का, किस जाति का, किस देश का, कहीं का भी नहीं। हम सब कहां के हैं? हाँ, परम धाम के हैं। एक ही घर से आए हैं, एक ही घर हमें जाना है और हम सबका बाप भी एक ही है। बाबा अभी वर्तमान समय हम बच्चों से क्या चाहते हैं, क्या आश है बाबा की हम बच्चों में, बोलो। आप समान बनाओ। अच्छा, और बाप समान बनो। और बोलो। हाँ, पिछले सीजन की वाणी याद होगी ना, बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क भी दिया हुआ है, क्या बनना है, याद आया क्या बनना है? ज्वालामुखी स्वरूप बनना है, संपूर्ण फरिश्ता बनना है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाना है, सबसे बड़ी बात। हाँ, क्योंकि हम ब्रह्मा बाप की मुख वंशावली संतान, मुख के द्वारा हमने सेवा की और कर रहे हैं, लेकिन अभी समय आ गया है मनसा सेवा का। और मनसा सेवा कौन कर सकेंगे? हाँ, बाबा कहते मनसा सेवा करने के लिए मनसा की क्या तैयारी चाहिए? फरिश्ता बनना। अच्छा, और फरिश्ता बनेंगे तब मनसा सेवा कर सकेंगे ऐसे? और मनसा सेवा कौन कर सकेगा? व्यर्थ से मुक्त होगा। और जी, शुभ भावना, शुभ कामना। अच्छा, और जी, पवित्र हो रहेगा, वो तो हमारा फाउंडेशन है। ब्राह्मण माना ही पवित्र। हाँ, जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती है उतनी ज्ञान की रोशनी बढ़ती है, और जितनी ज्ञान की रोशनी बढ़ती है उतनी ही बाबा से मिले हुए वरदान, बाबा से मिली हुई शक्तियां हम बच्चों के अंदर आती हैं, जो हम कार्य में लगाते हैं। तो मनसा सेवा भी वही आत्मा कर सकती है कि सबसे पहले उसके पास शुद्ध संकल्पों का स्टॉक चाहिए, शुद्ध संकल्प की शक्ति चाहिए। और शुद्ध संकल्प की शक्ति अगर स्टॉक में चाहिए तो उसके लिए जरूर हमें कैसे रहना होगा? व्यर्थ से मुक्त रहना होगा, क्योंकि व्यर्थ को लीकेज कहा जाता है। अगर हम बाबा से अमृत वेले वरदान लेते हैं, शक्ति लेते हैं, बाबा की वाणी सुनते हैं, लेकिन अगर व्यर्थ चलता है या व्यर्थ वाणी है, व्यर्थ संकल्प है, तो जो हम कमाई करते हैं वो क्या हो जाती है? लीकेज हो जाती है, बह जाती है। लेकिन अभी यह समय है हर बात की बचत करने का, संकल्प की बचत, वाणी की बचत। हाँ, बाबा कहते हैं एनर्जी की बचत करो, ताकि हम बाबा के कार्य में मददगार बच्चे हैं। जहां बाबा को उस पावर को लगाना है, जिस कार्य के लिए लगाना है, वह हमें यूज कर सके, लगा सके। इसीलिए मनसा शक्ति भी उतनी पावरफुल चाहिए और स्टॉक भी हमारे पास चाहिए। तो बाबा की वर्तमान समय की तीन बातें हैं जो बाबा हमारे से चाहता है, जो आप सभी ने भी नोट किया कि सबसे पहले तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी ज्वाला स्वरूप का अभ्यास चाहिए। बाबा को हम सभी याद करते हैं। बाबा ने एक वाणी में कहा भी कि मेरे जो बच्चे हैं, सभी बच्चे स्नेह के सब्जेक्ट में पास है, सभी स्नेही है। आज भी अगर किसी को भी पूछो कि बाबा से आपका कितना संबंध है, कितना प्यार है, तो कोई भी नहीं कहेगा कि मेरा कम प्यार है। कोई कहेगा? नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि सब हम बाबा के स्नेही है। तो बाबा कहता है कि मेरे बच्चे स्नेह में तो पास हो गए, लेकिन अभी क्या चाहिए? समय अनुसार क्या चाहिए? आत्मा शक्तिशाली चाहिए, शक्ति स्वरूप चाहिए। जो आने वाले विघ्न कहो, समस्याएं कहो, परिस्थितियां कहो, उन सबका सामना कर सके। इसीलिए स्नेह के साथ शक्ति को भी हमें धारण करना है, शक्ति का भी अनुभव करना है। तभी हम प्यारे बाबा की मनसा सेवा भी कर सकेंगे। और जो बाबा अभी कह रहे हैं कि बच्चे ज्वाला स्वरूप का अभ्यास होना चाहिए, ज्वालामुखी का अनुभव करना है, और उसमें भी बाबा कहते विशेष कब करो? अमृत बेले। अमृत बेले उठ करके प्रेम से फ्रेश होकर के बाबा की याद में ऐसे बैठो, अपने ऊपर फुल अटेंशन दे करके, अलबेलाई से नहीं, झुटके घुटके खाते हुए नहीं, लेकिन पावरफुल स्थिति में बैठो, ताकि बाबा के द्वारा शक्तियों का हम आत्मा अनुभव कर सके, जो सारा दिन हमारे कार्य में आ सके। और दूसरी बात ये है कि बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, जैसे अभी आप सभी कह रहे थे फरिश्ता बनना, फरिश्ता किसको कहा जाता है? फरिश्ता माना ही जो सदा हल्का है, लाइट माइट है, सदा सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना करने वाला है। बाबा ने एक वाणी में कहा कि बच्चे जो शुभ भावनाएं है तुम्हारी, वो शुभ भावना में वो पावर है, वो शक्ति है कि वो पत्थर को भी पानी कर देती है। सुनिए वो वाणी, तुम्हारी भावनाएं, शुद्ध भावनाएं, शुभ भावनाएं क्या करती है? जो आत्मा पत्थर के समान है, ऐसे को भी वो पिघला देती है, पानी कर देती। माना शुभ भावना में कितनी पावर है, सोच सकते हैं? और वो शुभ भावनाएं करने वाला कौन? वो है फरिश्ता। इसीलिए बाबा ने पिछले सीजन में ये कहा था एक वाणी में कि बच्चे सारे दिन के अंदर आप अपना कोई ना कोई समय फिक्स करो। किस बात के लिए? शुभ भावना, शुभ कामना करने के लिए या मनसा सेवा के लिए। चाहे फिर वो 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, लेकिन करो जरूर। समय अपना सारी दिनचर्या के अंदर जो आपको सहज होता है, वो समय फिक्स करके सारे विश्व को शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं अवश्य दो। इससे क्या होगा? अन्य आत्माओं की दुआएं तो हमें मिलेगी ही, लेकिन हमारा विशेष फायदा ये होगा कि सबसे पहले जो हमारी मनसा है, वो मनसा एकदम शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। जो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बच्चों के अंदर अशुद्ध संकल्प तो कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ ज्यादा है। और उसका कारण ये है कि सारे दिन की दिनचर्या के अंदर व्यर्थ बातें सुनना, व्यर्थ बातें करना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें बच्चों का समय जाता है। भले खुद नहीं करेंगे तो कोई करता है उसको टेका दे देंगे, हां से हां मिलाते रहेंगे, जिस कारण से संगम का जो इतना बड़ा हमें मिला हुआ अमूल्य समय है वो समय वेस्ट हो जाता है। तो अगर हमने समय वेस्ट किया, संकल्प वेस्ट किए, अगर हमने अपने वाणी वेस्ट की, तो उसका जो परिणाम होता है वो परिणाम किस पर होता है? हमारी स्थिति पर पड़ता है, मनसा पर होता है। जिस कारण से आत्मा जो ज्वाला स्वरूप का अनुभव करना चाहती है वो ज्वाला स्वरूप का अनुभव फिर कर नहीं सकती है। इसलिए अगर हमें ज्वाला स्वरूप का अनुभव करना है तो उसका सबसे पहला पुरुषार्थ ये है, सारे दिन की दिनचर्या में मैं आत्मा व्यर्थ से बची रहूं, ना मैं व्यर्थ करूं, ना मैं व्यर्थ सुनूं, ना मैं व्यर्थ बातों में जाऊं। हाँ, बाबा ने एक वाणी में बहुत सुंदर बात बताई कि बच्चे निरसंकल्प स्थिति क्या होती है, सुनी होगी आप सभी ने वो वाणी। निरसंकल्प स्थिति वो है जिसके दिल में एक बाबा दूसरा न कोई, केवल एक बाबा की याद के संकल्प है और एक बाबा के सेवा के संकल्प है, उसके अलावा तीसरा कोई भी संकल्प नहीं है, उसको कहा जाता है निरसंकल्प। अंत में जो हम बनेंगे निरसंकल्प कर्मातीत स्थिति होगी, वो हमारी अंतिम स्थिति है, लेकिन वर्तमान में जो हम सेवा कर रहे हैं, सेवा के फील्ड में है, तो बाबा ने ये विशेष बात कही है निरसंकल्प के लिए कि निरसंकल्प उसको कहा जाता है जिसके दिल में केवल एक बाबा की याद है और बाबा के सेवा के प्रति प्यार है। सेवा के बारे में सोचते हैं, सेवा के प्लान बनाते हैं, सेवा करते हैं, तो ये भी हमारी निरसंकल्प अवस्था गिनी जाती है। और इसके अलावा अगर हम अपना समय इधर उधर की बातों में वेस्ट करते हैं या साधारणता में आ जाते हैं, तो जो हमारी अवस्था है, हमारी स्थिति है, वो कैसी बन जाती है? साधारण बन जाती है। हमारी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई साधारणता में बदल जाती है। लेकिन बाबा कहते अभी ये समय ऐसा नहीं है, आपको अभी एवरेडी बनना है, अचानक कुछ भी हो सकता है और हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए हमारी स्थिति कैसी चाहिए? स्थिरियम चाहिए, अचल चाहिए, हिलने वाली नहीं, थोड़ी थोड़ी बात में रुट जाना, रोना धोना, या फीलिंग में आ जाना, या असंतुष्टता में आ जाना, किसी के ऊपर दोष लगा देना, किसी की ईर्ष्या करना, किसी की निंदा करना, अगर इन बातों में हम अपना समय अगर दे रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी अवस्था कैसी होगी? फिर हमारी अवस्था, कोई भी परिस्थिति आए तो उसका हम सामना नहीं कर सकेंगे, हिल जाएंगे, हिलने वाली अवस्था होगी। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी अवस्था में स्थिरियम रहो, चाहे कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे, लेकिन बाबा कहते उसको साक्षी होकर के देखो। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा का सीन है, कभी अच्छा भी सामने आ सकता है, कभी गलत भी सामने आ सकता है, लेकिन तुम बच्चे साक्षी होकर के देखेंगे तो उस सीन के बारे में भी किसी प्रकार के तुम्हारे संकल्प नहीं चलेंगे और स्थिति तुम्हारी हलचल में नहीं आएगी, स्थिति आपकी स्थिर रहेगी। और अभी इस बात की जरूरत है, और इसलिए जितना हम बाबा को प्रेम से याद करेंगे, जितना अमृत बेला पावरफुल करेंगे, प्यारे बाबा की जो वाणी चलती है उस वाणी पर जितना हम अटेंशन देंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, उतनी हमारे पास अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। और जितना अनुभव बढ़ता जाएगा, तो जैसे लौकिक में भी कहा जाता है ना कि अनुभवी व्यक्ति को हर जगह माना जाता है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। अगर कोई अचानक घर में कोई बात होती है तो क्या कहते, भाई फलाना हमारा अनुभवी है उसको पूछो, उसको खास स्थान दिया जाता है, उसको माना जाता है। उसी प्रकार बाबा अभी क्या कहते हैं, बच्चे ज्ञान के जो पॉइंट है उसका संग्रह तो आपके पास बहुत हो गया है, वो तो चाहे तो आप बाबा को भी ज्ञान सुना सकते हो, इतने पॉइंट आपके पास है। लेकिन अभी बाबा क्या चाहता है हमारे से, हर पॉइंट का अनुभव चाहता है। बाबा कहते अभी अनुभव स्वरूप बनो, अनुभव की अथॉरिटी बनो, तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। और अनुभव करने की विधि क्या है, अनुभव कहाँ होता है, आप सभी बाबा को याद करने वाले बाबा की योगी बच्चे हैं, अनुभव कहाँ होता है हम सबको जी, योग में। अच्छा, कहाँ अनुभव होता है, परिस्थितियों में। अच्छा, और जी कार्यक्षेत्र में कैसा अनुभव होता है, राइट बात है, लेकिन कैसा अनुभव होता है, बाबा की मदद मिलती है। जब कोई परिस्थिति आती है तो क्या तुरंत अपने को याद किया आता है, जैसे मान लीजिए अगर अचानक किसी ने हमारे ऊपर गुस्सा कर लिया, किसी ने कुछ हमें बोल दिया, तो पहले अंदर क्या आएगा, मैं भी इसको तुरंत बोल दूं, ये नहीं आएगा। अगर बाबा का ज्ञानी बच्चा है, ज्ञानी तो आत्मा है, वो पहले क्या करेगा, पहले उसको याद आएगी कि इसके लिए बाबा की क्या शिक्षा है, अभी मुझे क्या करना है। ऐसे नहीं कि जैसे उसने गुस्सा किया तो ये भी तुरंत गुस्सा कर देगा, नहीं करेगा ना, पहले सोचेगा, शिक्षा याद आएगी और उसके बाद उसका सामना करेगा जिस रीति से भी करना है। तो अनुभव क्षेत्र में ही बढ़ता है, परिस्थितियों में बढ़ता है। परिस्थितियां नहीं आई तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे अंदर कितनी शक्ति जमा हुई है, कैसे हम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, उसका अनुभव होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए कहते हैं ना, जो भी बात आती है, जो भी समस्या आती है, वो हमें कुछ सिखाती है, कुछ अनुभव कराती है, कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। उससे हम सीख भी जाते हैं, नहीं सीखते हैं क्या, जैसे आज अगर मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और अगर समय के बारे में हम एक्यूरेट नहीं है और अचानक ऐसे ही अगर कहीं ट्रेन से सफर करना हो और हम समय पर नहीं पहुंचे और ट्रेन छूट गई तो क्या होता है, आपका पैसा भी गया, समय भी गया, जिस बात के लिए आप जा रहे थे वो भी आपसे नहीं हो पाई, वंचित हो गए, तो दूसरे समय पर आप कैसे हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, सीखेंगे ना उस बात से, अरे छोटा थोड़ा सा भी हम लेट हो गए तो ऐसा हो जाता है, उससे तो हम 15 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचे वो अच्छा है, तो उसके बारे में आप अलर्ट हो जाएंगे। तो वैसे तो पहले से हम अलर्ट रहते हैं, लेकिन अचानक अगर बात हो गई वो हमें और भी अलर्ट कर देती है। तो उसी प्रकार बाबा की जो बातें हैं, बाबा का जो ज्ञान है या शिक्षाएं है, एक है सरल सरल रीति से सुनना और उसका अनुभव करना, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं होती है जितनी जब हमारे पर कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, और फिर उस समस्या में जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा पर छोड़ देते हैं, बाबा से पूछते हैं, और फिर अगर हमें बाबा की मदद मिलती है और निवारण हो जाता है तो हम बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये हमारा अनुभव एक हमारी अथॉरिटी बन जाती है। तो बाबा भी क्या चाहता है, अभी हर एक बात का ऐसा अनुभव करो, अनुभव की अथॉरिटी बनो, साथ साथ अगर कभी आत्मा को चलते चलते नर्वसपना आ गई, उदासी आ गई, बाबा क्या युक्ति बताते, बाबा कहते बच्चे जो बाबा से सर्व खजाने जो मिले आपको, सर्व प्राप्तियां जो हुई है, वो क्या करो, आप अपने सामने रखो, उसको याद करो, कि बाबा से मुझे क्या मिला, क्या क्या प्राप्ति हुई। जब आप प्राप्तियों को देखेंगे तो प्राप्तियों का आपको नशा चढ़ जाएगा, प्राप्तियां देख करके आपको खुशी होगी, और जब आपकी खुशी लौट के आएगी तो अपने आप उदासी भाग जाएगी। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे खुशी तुम्हारी खुराक है। भले इस देह से आत्मा निकल जाए लेकिन तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुशी बाबा का बहुत बड़ा खजाना है जो हमें संगम पर मिलता है। और ये खुशी हमें कोई भी देदारी सारे कल्प में नहीं दे सकता है, जिसका अतीन्द्रिय सुख के आधार से गायन है। तो इसीलिए जहां भी हमारी खुशी गायब होती है, प्रसन्नता गायब होती है, तो हमने क्या करना चाहिए, उस चीज को कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसको कभी भूल से भी अपनाना नहीं चाहिए जहां हमारी खुशी गायब होती है। कभी ऐसे होता है नहीं कि अगर आज कोई हमारी बहुत महिमा करे, हम इतने नशे में चूर हो जाते हैं कि हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं, इतनी अपार खुशी हो जाती है ना। लेकिन अगर कोई एक सेकंड में ग्लानी कर दे तो क्या होता है, वो खुशी का पारा उतर जाता है। बाबा कहते ऐसी तुम्हारी अवस्था नहीं होनी चाहिए। क्या सबसे बड़ा मार तो महिमा का होता है, महिमा को स्वीकार करना सिंपल बात नहीं होती है। बाबा कहता है तुम्हारी जो अवस्था है वो एक रस चाहिए, एक रस अवस्था में जो आनंद है वो अनेक रसों में नहीं। और बाबा ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है, ऐसी हस्ती है कि वो हमारे अंदर सब प्रकार की रसनाएं भर देता है। बाबा कहता है ना, मैं तुम्हारा सर्वस्व हूं, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो और सर्व संबंधों की रचनाएं आप ले सकते हैं, सर्व संबंधों का अनुभव आप कर सकते हैं। और इसीलिए हम सभी बाबा के कौन है, एक रस स्थिति वाले और एक के साथ संबंध रखने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। और निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी ये होती है, एक बल एक भरोसा। जो अनुभव ये शब्द है, ये अनुभव कहाँ आता है, अनुभव ये चौथी स्टेज है। अनुभव के लिए सबसे पहले चाहिए जिसके साथ आपका रिलेशन है, संबंध है, पहले तो उसमें आपका निश्चय चाहिए। जहां निश्चय है वहां विश्वास होता है, फेथ होता है। निश्चय में विश्वास, और विश्वास में प्रीत होती है, प्यार होता है। और जहां प्रीत होती है वहां अनुभव होता है, अर्थात प्राप्ति होती है। इसीलिए अनुभव ये चौथी स्टेज है। इसलिए देखो बाबा विवानी में क्या कहता है, निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती, प्रीत बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय ये फाउंडेशन हो गया, लेकिन फाउंडेशन को जब तक आपने प्रीत का पानी नहीं डाला, प्रीत बुद्धि नहीं बने, तब तक आप विजयंती नहीं बन सकते। माला में कौन आएगा, विजय माला किसकी गाई हुई है, विजय माला किसकी गाई है, विजय माला में कौन आ सकते हैं, जो बच्चे बाबा से सदैव सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, सर्व संबंधों का अनुभव है। अगर एक भी संबंध के अनुभव की हमारे पास कमी रहेगी तो वो संबंध हमारे बुद्धि को क्या होगा, बार बार खींचेगा, कोई ना कोई देहधारी उस संबंध के माध्यम से हमारी बुद्धि को भटकाएगा जिसका अनुभव हमारे पास नहीं होगा। उसी प्रकार सर्व शक्तियों का अनुभव, विजय माला का आधार सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व शक्तियों का अनुभव। अगर सर्व शक्तियों का अनुभव नहीं है, जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं ना, कई बच्चे समझते हैं चलो मेरे अंदर सारी शक्तियां, एक शक्ति नहीं रही तो क्या होगा, लेकिन बाबा क्या कहते, वो एक शक्ति आपको क्या करेगी, फेल कर देगी। अगर एक भी कमी है वो फेल कर देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का अनुभव होना यह भी जरूरी है, सर्व संबंधों का अनुभव होना यह भी जरूरी है। और जिन बच्चों के पास सर्व संबंधों का अनुभव है, सर्व शक्तियों का अनुभव है, वह आत्मा अवश्य फरिश्ता बनती है। और फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं बने तो देवता बनेंगे नहीं बनेंगे, फिर कहां जाना होगा। हाँ, बाबा कहते अगर युद्ध करते करते ही अंतिम स्थिति आ गई, हाँ उसमें अगर युद्ध करते करते ही चले गए तो कहां चले जाओगे, क्षत्रिय में जाना पड़ेगा, देवताई घराने का सुख नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए हम सभी का क्या लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना ही है। और अगर संपूर्ण फरिश्ता बनना है तो फरिश्ते का पहला लक्षण क्या है, सदा सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना करना। शुभ भावना शुभ कामना करेंगे तो अगर आपका योग ऊपर नीचे होता है ना, योग नहीं लगता है तो योग भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भावनाओं के माध्यम से जो हमारे पास दुआ आएगी आत्माओं की, तो वो दुआ क्या करेगी, हमारा योग लगा देगी, योग सहज हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे जैसे वाणी के द्वारा तुम सेवा करते हो, बाबा का परिचय देते हो, उससे भी बड़ी सेवा कौन सी है, मनसा से हर आत्मा के प्रति अच्छी भावनाएं करना, अच्छा स्वरूप बनाना, अच्छी शक्तियां दान देना, उनको अपने वाइब्रेशन देना, ताकि उन आत्माओं का भी भला होता रहे। ओम शांति। अभी तो हमारी दीदी जी पहुंच गई है, हमारी दीदी जी पहुंच गई, स्वागत तो करो।